हरे कृष्णा। तो आज हम आज के प्रवचन में श्री बंसी वदन ठाकुर इन महान वैष्णव के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्र में हम देखते हैं श्री पट्ट पर्यटन नाम का ग्रंथ है, बंसी विलास नाम का ग्रंथ है जो शिव वल्लभ ने लिखा हुआ है, और हम देखते हैं कि गौड़ीय वैष्णव अभिधान नाम का ग्रंथ है, और नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा हुआ भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है, और साथ साथ में कवि कर्णापुर इन्होंने लिखा हुआ गौर गणोदेश दीपिका ये ग्रंथ है। इन सारे ग्रंथों में हमें वंशी बदन ठाकुर जी के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। कवि कर्णापुर जी कहते हैं, वंशी कृष्ण प्रिया यासित सब वंशीदास ठाकुर, कि जो कृष्ण भगवान के अवतार में कृष्ण भगवान को अति प्रिय वंशी थी, वही वंशीदास ठाकुर के रूप में गौरांग लीला में प्रकट हुए। वंशी बदन ठाकुर को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि वंशीदास ठाकुर, जैसे कि वंशी वदन ठाकुर, जैसे कि वंशी वदनानंद ठाकुर और वंशी वदन ठाकुर, ये कृष्ण भगवान के वंशी के अवतार थे। माधवदास नाम के एक महान भक्त थे जो कुलिया ग्राम में रहते थे, जो स्वयं युधिष्ठिर भट्टाचार्य के पुत्र थे। माधवदास को चकरी चट्टोपाध्याय इस नाम से भी लोग जानते थे, और वो चैतन्य महाप्रभु के बड़े विशेष भक्त थे, कुलिया ग्राम में निवास करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी जगन्नाथ पुरी धाम से श्री नवद्वीप में दोबारा आए अपनी माता का दर्शन करने के लिए और श्री गंगा मैया का दर्शन करने के लिए, तभी वो कुलिया ग्राम में श्री माधवदास जी के घर में उन्होंने 7 दिन तक निवास किया। उनके संग में उस समय अद्वैता आचार्य भी थे, और इस 7 दिन के निवास के समय उन्होंने गोपाल चक्रवर्ती, देवानंद पंडित और उनके जैसे अनेक लोगों ने जो पिछले समय में पूर्व काल में जिन्होंने अपराध किया था वैष्णवों का, वो सब अपराधों को उन्होंने माफ कर दिया। इसलिए उस 7 दिन में जो भी लीला हुई कुलिया ग्राम में, तो कुलिया ग्राम का एक नाम पड़ा अपराध भंजन स्थली। तो इसी उनके वास्तव्य के समय जब वहां पर अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे माधवदास के घर में, माधवदास और उनकी वैष्णव भक्ति भावित पत्नी चंद्रकला देवी, जो दोनों चैतन्य महाप्रभु के बड़े विशेष भक्त थे, इन दोनों को पुत्र प्राप्ति हुई और चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में वंशी बदन का जन्म हुआ। तो ये एक विशेष बात है, महाप्रभु जी के सानिध्य में उपस्थिति में वंशी बदन ठाकुर का कुलिया ग्राम में जन्म हुआ। जन्म के बाद में जब ये बढ़ने लगे, उनकी वृद्धि होने लगी शरीर की, तो ये बड़े बुद्धिमान प्रकट होने लगे, सुंदर सुंदर वैष्णव गुणों का उनके व्यवहार से अभिप्राय होने लगा, दर्शन होने लगा, और शास्त्रों में और भक्तों की सेवा में उनको रुचि दिखने लगी। तो अपने बाल्यपन के कुछ समय वो बिल्व ग्राम में रहे, और वहाँ पर युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय और उसके बाद में माधवदास चट्टोपाध्याय, इनकी जो पूर्वजों की चलती आई ही जो मूर्ति थी भगवान की, जो विग्रह थे गोपीनाथ जी के, इनकी सेवा वंशी बदन ठाकुर ने की, और उसके बाद में स्वयं उन्होंने प्राणवल्लभ इस नाम से कृष्ण भगवान की विग्रह को स्थापन किया। आज ये गोपीनाथ की विग्रह और प्राणवल्लभ के विग्रह कहाँ है, इसका भौगोलिक दृष्टि से पता नहीं चल रहा है। वंशी बदन ठाकुर ये गृहस्थ थे, उन्होंने विवाह किया और उनको 2 पितर हुए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका विशेष प्रेम भाव था, भक्ति भाव था, इसलिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का नाम श्री चैतन्य दास और श्री नित्यानंद दास रखा। इसमें से श्री चैतन्य दास को 2 पुत्र और हुए, उनका नाम रामचंद्र और सचिनंदन था। जो रामचंद्र थे ये ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इन्होंने विवाह नहीं किया, और इनकी विशेषता ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री वंशी बदन ठाकुर के पुत्र श्री चैतन्य दास, उनका पुत्र रामचंद्र, ये जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, प्रिया थी, उनके विशेष भक्त थे, डिसाइपल थे, शिष्य थे, और गोद भी लिए थे उनको, उन्होंने शिष्य होने के ऊपर भी उन्होंने रामचंद्र को गोद लिया था। तो ये रामचंद्र की विशेष कहानी ऐसी है, वंशी बदन ठाकुर के उपलक्ष्य में आती है, कि जब भगवान ने कृष्ण लीला में जब यमुना जी में छलांग लगाई थी कालिया का दमन करने के लिए, तो कालिया का दमन होने के बाद उनका शरीर बहुत ही ठंडा हो गया था, इसलिए वो जमुना जी के बाहर आके एक छोटे से टील पर, जिसको द्वादश आदित्य टील नाम से हम जानते हैं, वहां पर चढ़ के बैठे थे। वहां पर 12 सूर्यों ने आकर भगवान को उष्णता दी थी और उसके बाद में भगवान को दिव्य स्वेद पसीना आया था जो पहाड़ से नीचे उतरकर एक सरोवर में इकट्ठा हो गया। इसका नाम पड़ा प्रस्कंदन सरोवर। इस प्रस्कंदन सरोवर के किनारे में रामचंद्र को कृष्ण बलराम के विग्रह प्राप्त हुए और वही विग्रह लेकर वो बागनापाड़ा नाम की जगह पर नवद्वीप धाम में उसको लेके आए और उनकी सेवा किया उन्होंने। और जब वो चले गए तो उन्होंने इसकी सेवा अपने भाई सचिनंदन जो गृहस्थ थे उनको सौंप दी। उसके पश्चात वंशीवर्धन ठाकुर नवद्वीप आए और श्री जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के निवास स्थान योगपीठ इस पे वो आए और जगन्नाथ मिश्रा की सेवा में लगे। और जगन्नाथ मिश्रा जी के घर में बड़े मेहमान आते थे वैष्णव और उनको भोजन अर्पण करते थे। तो वैष्णवों की सेवा में, उनके घर के अर्च विग्रहों की पूजा सेवा में वंशीवर्धन ठाकुर दिन रात सेवा करते थे और जगन्नाथ मिश्रा की सेवक असिस्टेंट के रूप में उनकी सेवा देते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और नवद्वीप को छोड़कर वो जाने लगे तो उसी के पहले जगन्नाथ मिश्रा का देहांत हो चुका था। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा जो सेवाएं घर में होती थी, श्री विष्णु की मूर्ति की, तुलसी देवी की और बाकी सब जो विग्रहों की पूजा अर्चा होती थी, उन सब में वंशीवर्धन ठाकुर उनको मदद किया करते थे। जब उन्होंने संन्यास लिया तो उस समय सची माता थी घर में, उनकी विधवा माता, और उनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया देवी। दोनों ने बहुत आकांत किया, उनको जाने से रोका, लेकिन महाप्रभु निश्चय में थे। तो जब एकांत में वो उस रात को, जिस रात को वो मकर संक्रांति के दिन अगले दिन संन्यास लेने के लिए जाने वाले थे, उस रात को सची माता को उन्होंने अपने ही हाथ से एक मूर्ति प्रकट की, स्वयं की मूर्ति, और सची विष्णुप्रिया देवी को कहा कि इस मूर्ति को आप पूजन करना, इस मूर्ति के रूप में मैं सदैव आपके पास रहूंगा और जो भी आप भोग अर्पण करेंगे, सेवा करेंगे, प्रत्यक्ष रूप में मैं आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। उस समय वंशीवर्धन ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, गौरांग महाप्रभु ने, कि मेरी माता सची माता और मेरी पत्नी विष्णुप्रिया देवी, इनके जीवन के अंत समय तक आपको यहीं रहकर उन दोनों की सेवा करनी है। तो ये महाप्रभु जी की आज्ञा श्री वंशीवर्धन ठाकुर ने अपने सर आंखों पर ली और जीवन के अंत तक इस आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर श्री नवद्वीप धाम में परिक्रमा करने आए। जीव गोस्वामी को स्वयं उन्होंने परिक्रमा दिया। तो सबसे पहले जीव गोस्वामी को लेकर वो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के घर योगपीठ लेके आए। उस समय जगन्नाथ मिश्रा तो नहीं थे, सची माता ने जीव गोस्वामी का स्वागत किया और फिर सची माता ने अपनी बहू विष्णुप्रिया देवी को आदेश दिया जीव गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु के लिए भोजन बनाने के लिए। तो जो भी पंच पकवान विष्णुप्रिया देवी ने बनाए भोग के रूप में, वंशीवर्धन ठाकुर जी ने उनको, भगवान को यानी कि थामेश्वर गौरांग को भोग लगाया और वो फिर सची माता देवी और वंशीवर्धन ठाकुर जी ने जीव गोस्वामी और नित्यानंद महाप्रभु जी को उसको अर्पण किया। और फिर वहां से जब वो आराम करके निकले प्रसाद लेकर, तो उन्होंने वंशीवर्धन ठाकुर को अपने संग में ले लिया आगे की परिक्रमा में। और तभी बड़ी प्रेम से नित्यानंद प्रभु जी ने वंशीवर्धन ठाकुर को जीव गोस्वामी को परिचय कराया। उन्होंने कहा, देखिए ये वंशीवर्धन है, हर एक व्यक्ति यहाँ का जानता है कि ये कृष्ण के वंशी के अवतार है, जिस वंशी ने हर जीव को पृथ्वी पर अपने ध्वनि से आकर्षित कर लिया और भाव में डुबो दिया। ये वंशीवर्धन जो है, ये जगन्नाथ मिश्रा अपने समय पर जैसे भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा करते थे, उसके पश्चात जैसे महाप्रभु चैतन्य गौरांग महाप्रभु उन्हीं विग्रहों की पूजा सेवा करते थे, उन्हीं उसी प्रकार से, उसी भाव से उन सारे विग्रहों की सेवा बड़े ही ध्यान पूर्वक ये वंशीवर्धन रोज किया करते हैं। और ईशान ठाकुर को भी अपनी सेवा में ले लेते हैं। जब ऐसा परिचय श्री नित्यानंद प्रभु करा रहे थे तो उनकी आंखों से प्रेम के अश्रुओं की धाराएं बह रही थी। बड़े ही भाव से उन्होंने वंशीवर्धन का परिचय जीव गोस्वामी को दिया। इसके पश्चात आचार्य श्रीनिवास श्री नवद्वीप में आए। और ऐसा कहते हैं कि मानो सच्ची माता विष्णुप्रिया और सारे जो बड़े बड़े वैष्णव थे वो केवल श्रीनिवास आचार्य को वरदान देने के लिए ही जी रहे थे, अन्यथा गौरांग महाप्रभु के संन्यास लेने के जाने के पश्चात उनके जीवन में जीने के लिए ऐसा कोई उद्देश्य नहीं बचा था। तो सच्ची माता का आशीर्वाद लेने के लिए, विष्णुप्रिया जी का दर्शन करने के लिए श्रीनिवास आचार्य नवद्वीप आए तो बंसीवदन ठाकुर ने उनका स्वागत किया, और बंसीवदन ठाकुर का उनका परिचय नहीं था, फिर भी उनको हृदय में ऐसी अनुभूति हुई कि ये श्रीनिवास आचार्य हैं। बड़े प्रेम से उन्होंने उनको गले लगाया और बड़े लंबे समय तक अपने आलिंगन में उन्होंने श्रीनिवास जी को रोक के रखा और अपने आंसुओं से उनके शरीर में उन्होंने स्नान करवाया। आचार्य श्रीनिवास बहुत कोशिश कर रहे थे कि बंसीवदन ठाकुर के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, लेकिन बंसीवदन ठाकुर ने उनको अपने आलिंगन से मुक्ति नहीं किया और ना उनको चरण स्पर्श करने दिया। फिर बड़े प्रेम से बहुत देर तक आलिंगन में रखते हुए, अश्रुओं से भिगोते हुए, उसके पश्चात आचार्य श्रीनिवास को बंसीवदन ठाकुर सची माता और विष्णुप्रिया देवी का परिचय करने के लिए देखे गए। फिर विष्णुप्रिया देवी और सची माता ने हृदय भर भर के श्रीनिवास आचार्य को आशीर्वाद दिया, उनकी बड़ी कृपा प्राप्त की। बंसीवदन ठाकुर की उपस्थिति में उनके साक्षी के रूप में आचार्य श्रीनिवास ने बहुत ही तीव्र कृपा इन दोनों महान भक्तों की प्राप्त की। उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, और उसके पहले संन्यास ऑलरेडी महाप्रभु ले चुके थे। उसके पश्चात सची माता का देहांत हुआ। सची माता इस विश्व को छोड़कर विरह की अग्नि में जलते हुए शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर सची माता के जाने के पश्चात विष्णुप्रिया देवी और बंसीवदन ठाकुर अकेले हो गए, विरह की अग्नि में वो जलने लगे। उस समय एक दिन विष्णुप्रिया देवी और बंसीवदन ठाकुर ने ऐसा निर्णय लिया कि अभी हम आगे नहीं जिएंगे, हमारे जीवन में जीने के लिए क्या उद्देश्य बचा है, मर जाएंगे। दोनों ने भोजन करना और कोई पेय पीना छोड़ दिया, और जल प्राशन अन्न प्राशन छोड़कर उन्होंने मृत्यु को आलिंगन देना चाहा। ऐसा कठोर निर्णय लेने के बाद तुरंत उन्होंने उसको अमल किया। उनका कठोर व्यवहार देखकर स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु वहां प्रकट हुए और उन्होंने उनको कहा कि ऐसा कठोर कर्म आपको नहीं करना है, जो मैंने आपको विग्रह दिए हैं धामेश्वर गौरांग के, उनकी आप सेवा कीजिए, और उनकी सेवा करने के पश्चात आपकी विरह अग्नि ठंडी हो जाएगी, उसका शमन हो जाएगा। महाप्रभु जी के अंतर्धान होने के पश्चात जब उन्होंने दोबारा अपने निश्चय को एकत्र करके जब पुनः धामेश्वर गौरांग की सेवा करना आरंभ किया, थोड़ी बहुत मात्रा में उनका विरह का अग्नि शांत हो गया। हम सब जानते हैं कि 16 साल की उम्र जब विष्णुप्रिया देवी की थी तब श्री गौरांग महाप्रभु नवद्वीप छोड़कर संन्यास लेने के लिए चले गए थे। विष्णुप्रिया देवी 16 साल के कोमल आयु से, कोमल अवस्था से 96 साल की वृद्ध अवस्था तक, 80 साल तक उन्होंने एकांत में किसी को न मिलते हुए केवल बंसीवदन ठाकुर के वात्सल्यमयी संघ में उन्होंने धामेश्वर गौरांग की सेवा की। वो रोज एक दाना चावल का एक महामंत्र बोलने के पश्चात अलग रखती थी, और सुबह भली भोर के समय से आरंभ करती थी और शाम तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी। एक एक मंत्र के बाद एक एक चावल का दाना इकट्ठा करने से जो उतने भी दाने इकट्ठा होते थे केवल उन्हीं को पकाकर धामेश्वर गौरांग महाप्रभु को अर्पण करके वही भोजन करती थी। पूरा नवद्वीप हमेशा ये आश्चर्य किया करते थे सब लोग कि विष्णुप्रिया कैसे जी रही है, कैसे अपने शरीर को जिंदा रख रही है, कैसे जीवित रख पा रही है, क्योंकि इतना थोड़ा सा मात्रा में वो भोजन करती थी। लेकिन दुख की बात यह कि 80 साल पहले तो महाप्रभु की जी के आदेश के अनुसार सची माता के जीवन के अंत तक उन्होंने बंसीवदन ठाकुर जी ने उनकी सेवा की। 80 साल के पश्चात विष्णुप्रिया देवी भी विरह की अग्नि को न सहते हुए वो भी उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब जाकर विष्णुप्रिया जी की जो आराध्य विग्रह था धामेश्वर गौरांग का, उसको लेकर बंसीवदन ठाकुर बड़े विरह में, दुख में नदी पार करके कुलिया ग्राम आए, जहाँ पर आज हम उसको नवद्वीप सिटी कहते हैं या कोलद्वीप कहते हैं, जहाँ पर जगन्नाथदास बाबा जी की समाधि है, वहीं पर जो आज मंदिर है धामेश्वर गौरांग का, उस जगह पर बंसीवदन ठाकुर ने स्वयं धामेश्वर गौरांग की मूर्ति को स्थापन किया। इसका अंतरंग कारण यह है कि नित्यानंद प्रभु ने इस को भविष्यवाणी की थी कि महाप्रभु जी के जाने के पश्चात 100 साल होने के पश्चात गंगा नदी में बाढ़ आएगी और नवद्वीप में जो अंतर्द्वीप है मायापुर उसको वो घेर लेगी और अंतर्द्वीप ये अप्रकट हो जाएगा विश्व के दृष्टि के लिए। तो उसी के पहले ही सच्ची माता और उसके बाद में विष्णुप्रिया के देह छोड़ने के पश्चात वंशीवदन ठाकुर इस मूर्ति को लेकर कुलियाग्राम गए। इसलिए मूल स्थान योगपीठ होने पर भी आज विष्णुप्रिया की जो विग्रह हैं वो नवद्वीप में कोलद्वीप में है। इस रामेश्वर गौरांग महाप्रभु के सुंदर नेत्र कमल जैसे फैले हुए हाथ सबको कृपा देने के लिए इतनी सुंदर मूर्ति है। उनके चरणों के नीचे जो जिस जगह पर वो जिस आसन पर महाप्रभु जी खड़े हैं उसमें बंसीबदन ठाकुर का नाम जो है उसको लिखा गया है। बंसीबदन ठाकुर जी कुछ समय कुलियाग्राम में रहे और उसके बाद में अपने जो पूर्वजों का गांव था बिल्वग्राम वहां पर अपने जीवन के अंतिम समय उन्होंने वहां बिताया और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वो उस गांव में जो भट्टाचार्य जी है उन्हीं को बंसीबदन ठाकुर जी के जो वंशज के रूप में मानते हैं जो आज वहां पर सेवा कर रहे हैं। बंसीबदन ठाकुर एक महान कवि भी थे, अनेक गीतों को लिखा करते थे, उन्होंने कई गीत लिखे हैं और गौड़ीय जो आदर्श पत्रिका है उसके अंदर 20वें अध्याय में 30वें से लेकर 37वें श्लोक में उन्होंने लिखा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही उत्कट गीत का वर्णन आता है। ये गीत उन्होंने महाप्रभु चैतन्य के संन्यास लेने के पश्चात जो उन्होंने कंटक नगर से लेकर फिर पुरी में गमन किया उसके बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य के जाने के पश्चात सच्ची माता और विष्णुप्रिया देवी इतना हृदयंगम इतना हृदय द्रावक विरह का अनुभव करते थे, रोते थे, तो ये उनकी रुदन उनका उनका विलाप वंशीवदन ठाकुर को सुना नहीं जाता था। तो इसी भाव में उन्होंने ये कविता लिखी है जिसमें वो कहते हैं कहाँ गए गौरांग महाप्रभु, कहाँ गए वो उनके संगी जो उनके साथ में कीर्तन करते थे, कहाँ गए हमारे कमल नयन गौरांग महाप्रभु जो यहाँ पर लीला किया करते थे, कब उनका दर्शन होगा। और इसी कविता के प्रगति में आगे वो लिखते हैं कि कैसे केशव भारती जिन्होंने महाप्रभु जी को कंटक नगर में कटवा में संन्यास दिया कैसे वो पत्थर हृदय व्यक्ति हैं, कैसे वो जिनका हृदय पत्थर के समान कठोर है, कठोर हृदय है वो, जिन्होंने हमारे प्रिय गौरांग महाप्रभु को संन्यास देकर उनके परिवार से उनके गांव से बिछो कर दिया और एक तरह से उनको गलत शब्दों से वो पुकारते हैं, लेकिन वो उनका भाव है कि वो उनको महाप्रभु का विरह सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो केशव भारती जी को एक कठोर हृदय के रूप में प्रबोधन करते हैं। आगे आखिरी कड़ी में उस कविता में बंसीबदन ठाकुर जी लिखते हैं कि जब मैं विष्णुप्रिया देवी जो महाप्रभु जी की पत्नी है और उनकी सासू जी यानी कि महाप्रभु जी की माता सच्ची माता को मैं रोते हुए सुनता हूँ तो मुझे ये भाव सहन करना नामुमकिन हो जाता है, अशक्य हो जाता है। और उस भाव में उनका रुदन सुनते हुए मैं उनके घर के आंगन में रज में लोटपोट हो जाता हूँ, ऐसा वर्णन आखिरी कड़ी में बंसीबदन ठाकुर करते हैं। जिस तरह से उन्होंने सच्ची माता की सेवा की, जिस तरह से उन्होंने अंत तक विष्णुप्रिया देवी की सेवा की, उन्होंने अनंत कृपा इन महान आचार्यों ने लिखा है बंसी विलास में श्रीपट पर्यटन में भक्ति रत्नाकर में सभी आचार्यों ने लिखा है कि उन्होंने विष्णुप्रिया देवी की अनंत कृपा प्राप्त की और महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु जी का आदेश था सच्ची माता और विष्णुप्रिया देवी का उनके जीवन के अंत तक सेवा करने की आज्ञा थी उसको भी पूरी तरह से पालन किया, इसलिए महाप्रभु जी की भी उन्होंने पूरी कृपा प्राप्त की और इस तरह से बिल्वग्राम में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। हरे कृष्णा। श्री बंसीबदन ठाकुर महाशय की जय हो।